أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا إن شاء الله. अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाअल्लाह दोनों हम कहेंगे कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के किस्से में हम यहाँ तक पहुँचे थे कि मलाइका को खुदावंद मुताल ने सजदे का हुक्म दिया और उसके बाद तमाम मलाइका ने यानी तमाम आलम हस्ती ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। ठीक है, इसका मतलब भी आपके सामने पेश किया था। वो मतलब क्या था कि तमाम आलम हस्ती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और इंसान की खिदमत में आ गए हैं। इंसान के कमाल के रास्ते में ये तमाम मखलूकात आ गई हैं और इंसान को मदद देंगी और मदद दे रही हैं ताकि इंसान कमाल तक पहुँचे और वो भी कमाल तक पहुँचे। सही है, क्योंकि कल भी बात हुई थी कि तमाम दीगर मौजूदात भी कमाल का रास्ता तय कर रहे हैं। किसके जरिए तय कर सकते हैं, किसके साथ ताल्लुक जोड़ेंगे ये मखलूकात तमाम की तमाम दुनिया के अंदर आलम हस्ती के अंदर ताकि वो कमाल तक पहुंच सके? इंसान के साथ। ये मखलूकात इंसान के साथ मुताल्लिक हो चुकी हैं इस सजदे के बाद। सही है, ताकि वो भी कमाल को पहुंचे और इंसान भी कमाल तक पहुंचे। फिर बात हुई थी कि सबने सजदा किया सिवाय इबलीस ने, सिवाय शैतान के। अब इससे पहले कि हम इस मौजू को मज़ीद कंटिन्यू करें, हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से इज़न मांगते हैं, उनसे तवस्सुल करते हैं, उनसे मदद मांगते हैं कि वो हमारे लिए दुआ करें कि हम इस मौजू को बयान भी कर सकें और समझ भी सकें और इसके ऊपर अमल पैदा होने की तौफीक अता फरमाए खुदावंद मुताल। अच्छा, बात कहाँ तक हुई थी? बात फिर ये हुई थी, हाँ, कि शैतान ने सजदा करने से इनकार किया और खुदावंद मुताल ने और खुदावंद मुताल और शैतान के दरमियान एक कन्वर्जेशन आपकी खिदमत में पेश की कुरान की आयात से, मुख्तलिफ आयात में। और जब शैतान ने कहा कि मैं बर्तन हूँ, मैं आग से बनाया गया हूँ, वो खाक से बनाया गया है, और ये सारी बातें की उसने, अब यहाँ पर खुदावंद मुताल ने शैतान के इस तमर्रुद के बाद, तमर्रुद यानी इनकार के बाद, उसे उस मकाम और मंजिलत से जो पहले वो फाइज था, पहले मलाइका के दरमियान था, खुदा की इबादत में मशगूल था, सही, ये मकाम उसको मिला था बिलाखिर कि वो, अगरचे वो जिन में से था शैतान, लेकिन उसको ये मकाम दिया गया था कि तुम जाओ मलाइका के दरमियान और मेरी इबादत कर सकते। लेकिन अब इस तमर्रुद और इनकार के बाद खुदा ने इस मकाम से भी इसको गिरा दिया, निकाल दिया, अपनी रहमत से निकाला, खारिज किया। और फिर ये खुदावंद मुताल ने सूरह हिजर की आयत नंबर 34 में ये बात की कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क़ाला, खुदावंद ने मुताल फरमाने गए, फ़ख़रुज मिन्हा, तू निकल जा यहाँ से, फ़इन्नका रजीम। बहुत अजीम तअबीर है, खुदावंद ने शैतान को कहा कि तू रजीम है। रजीम यानी, रजीम के दो माना है, दो माना से मुराद यानी माना एक ही है, उसके दो हिस्से हैं, दो पार्ट्स हैं। रजीम का एक पार्ट ये है कि रहमत खुदा से तू दूर हो जा, वो शख्स या वो मखलूक जो रहमत खुदा से दूर हो जाती है और रहमत खुदा से दूर होने के बाद ता कयामत खुदा की लानत अबदी का शिकार है। सही, रजीम शैता, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान रजीम यानी वो जो खुदा की रहमत से दूर खारिज निकला हुआ और लाने इलाही ता कयामत, कयामत तक लाने इलाही का शिकार है ये। एक और जगह में सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 13 में आया है कि कौला, खुदावंद ने फरमाया शैतान को کہ فہبت فہبت منہا, تو یہاں سے حبوت کر جا. حبوت کی ہم بعد میں بات کریں گے, ٹھیک ہے. ایک جگہ حبوت شیطان کی بات آئی ہے, دوسری طرف سے آدم کو بھی حکم دیا گیا حبوت کا. انشاءاللہ بعد میں ہم آئیں گے حبوت کے حوالے سے. یہاں پر خداوند نے متعالی کہا کہ قال فہبت منہا فما یکون لکا ان تتکبر فیہا فخرج انکا, یہ امپورٹنٹ ہے, انکا من الصاغرین, شیطان تو صاغرین میں سے ہے. انکا یہ بھی سنگین تعبیر ہے, انکا من الصاغرین, جس قدر وہ تعبیر یعنی رجیم سنگین تھی اور خطرناک تعبیر, اس کا معنی بھی آپ نے دیکھا کتنا خطرناک معنی ہے, یہ بھی جو ہے اس سے کم نہیں ہے کہ انکا شیطان تو صاغرین میں سے ہے. کیا مطلب صاغرین؟ تو چھوٹا ہو گیا ہے, تو چھوٹوں میں سے ہے. کیا مطلب شیطان چھوٹا ہو گیا؟ یعنی انسان اور کوئی بھی مخلوق, اب چاہے وہ شیطان ہو چاہے وہ انسان ہو, جو بھی خدا کی معصیت کرے, گناہ انجام دے, عمل سیئہ انجام دے, غلط کام کرے, صحیح, وہ اس معصیت کو انجام دینے سے چھوٹا ہو جاتا ہے. کیا مطلب چھوٹا ہو جاتا ہے؟ اس کا وجود چھوٹا ہو جاتا ہے, اس کا نفس اور اس کی روح چھوٹی ہو جاتی ہے, صحیح. کیا مطلب چھوٹا ہونا؟ یعنی انسان جب عمل صالح انجام دیتا ہے, عمل حسنہ انجام دیتا ہے, صحیح ہے, خدا کی رضایت کی خاطر, ثواب کی خاطر, اور جو بھی خدا کے احکام ہیں اس کے اوپر عمل پیدا ہوتا ہے, اس سے انسان کے وجود میں پھیلاؤ آتا ہے. وجود کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب وجود ہے انسان؟ بدن تو مراد نہیں ہے, کل آپ کے سامنے پیش کیا, آج بھی ہم اس کو مزید دیکھیں گے کہ انسان کا حقیقی, انسان کی حقیقت اس کا بدن نہیں ہے بلکہ اس کا روح اور نفس ہے. جب انسان اچھا عمل انجام دیتا ہے تو اس کے نفس میں اور اس کی روح میں پھیلاؤ آتا ہے, وسعت آتی ہے, اور آہستہ آہستہ عالم غیب سے کنیکشنز بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور ماہ رمضان کی یہ خصوصیت ہے, ماہ رمضان میں یہ کام آسان ہو جاتا ہے, اپنے وجود کو وسعت دینا آسان بن جاتا ہے اس مہینے کے اندر. کیوں؟ کیونکہ انسان بدن کے احکام میں اب مشغول نہیں ہے, خدا نے اس کو صبح سے لے کر مغرب تک اجازت نہیں دیے کچھ بھی کھانے پینے کی اور دیگر کچھ اور چیزوں سے منع کیا ہے. کن چیزوں سے منع کیا ہے؟ بدن کے احکام کو امپلیمنٹ کرنے سے منع کیا ہے خداوند متعال نے. جب انسان بدن کے احکام کو انجام نہیں دیتا, نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ روح کے احکام ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بہت امپورٹنٹ ہے یہ, ویری امپورٹنٹ, کہ بدن کے احکام کا جب سوئچ آف ہو جاتا ہے ماہ رمضان میں خاص طور پر, تو روح ایکٹیو ہو جاتی ہے, نفس انسان کا ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. خاص طور پہ جب انسان جب روزہ رکھتا ہے ماہ رمضان میں اور اس کا روزہ غروب کے ٹائم تک پہنچنے لگتا ہے, آہستہ سے اس کی اینڈ پہ آتا ہے, تو بعض عرفا یہ کہتے ہیں کہ ہم جب غروب کے ٹائم پر پہنچتے ہیں تو ہماری روح پرواز کرنے لگتی ہے. کیوں؟ کیونکہ گرسنگی, بھوک کا تعلق اور بہت ہی گہرا تعلق روح کی پرواز سے ہے. جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کا نفس جو ہے وہ روح کے احکام میں مشغول ہوتا ہے, اور جب انسان پیٹ بھرنے کے اور کھانے پینے کے چکر میں لگا رہتا ہے تو اس کا نفس بجائے اس کے کہ علوف کی طرف توجہ کرے, اوپر کی طرف توجہ کرے, عالی کی طرف توجہ کرے, دانی کی طرف توجہ کرتا ہے اس کا نفس, شکم کی طرف توجہ کرنے لگتا ہے اس کا نفس. دیکھیں کس طرح خدا نے یہ نظام بنایا انسان کا. انک من الصاغرین, شیطان ابلیس تو اس معصیت سے چھوٹا ہوگا, یعنی تیرا وجود چھوٹا ہو چکا ہے. اب یہاں پر جو چھوٹا ہوا ہے ابلیس, کل ہم نے بات کی تھی نا کہ ابلیس نے تو ایک بہانہ کیا تھا کہ میں تو انسان کی حقیقت نہیں دیکھ پایا اور میں نے تو انسان کی حقیقت صرف اس کا بدن دیکھا میں نے اور بلا بلا بلا. نہیں, ابلیس نے یہ جو انکار کیا ہے انسان کا उसकी हकीकत का और सजदा नहीं किया उसने, ये काम उसकी, ये जो मासियत है इसकी, ये आलिमाना थी, यानी वो जानता था, इल्म रखता था, और दुश्मनाना थी, दुश्मनाना एनमिटी के साथ इसने ये काम किया है। इसी वजह से खुदावन ने मुतआल्लिफ़ फरमाया, इन्नका रजीम, लाने अबदी, मेरी लाने अबदी अब ता कयामत तुझे आती रहेगी। सही है, ओके। और लाने अबदी का मतलब यह है कि अब ये वापस नहीं लौट सकता खुदा की बारगाह में, अब जितना भी ये तौबा कर ले, ऐसा ना हो कि हम कोई गुनाह अंजाम दें। देखें, खुदा ना खासा, देखें, अब बिलाखिर 21st सेंचुरी है, गुनाह आम हो चुके हैं, मुसलमान गैर मुसलमान भी जो है, दोनों के दोनों जो है वो गुनाह का शिकार है, लेकिन मुसलमान को तो कम से कम गुनाह अंजाम नहीं देना चाहिए। जब एक मुसलमान, अब ये कॉमन बात है, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस मुसलमान के ऊपर है जो ईमान लाया है, जिसने इस्लाम कबूल किया है। जब एक मुसलमान गुनाह करता है, मासियत करता है, तो उसका वजूद छोटा हो जाता है, एक झूठ से वजूद इंसान का छोटा हो जाता है। चे जाए कि इंसान रोजाना झूठ बोले, चे जाए कि इंसान रोजाना गीबत करे, तो हम कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारा वजूद छोटा हो जाए खुदा के सामने। और खुदा के सामने से मुराद ये कि हकीकतन हमारा वजूद छोटा हो रहा है। अइमा अलैहिस्सलाम, उलमा, औलिया खुदा, उरफा, इनका वजूद बड़ा है, इनका वजूद वाइड है, WIDE, वाइड, सही है, इनके वजूद में फैलाव है। क्यों? क्योंकि ये मुसलसल अमल सालेह में मशगूल रहते हैं। बाज ऐसे उलमा मौजूद हैं, उरफा, अभी 2 दिन पहले टीवी पे भी एक आरिफ की बात आ रही थी, शायद उनका नाम था, अब मैं भूल गया, शायद मरहूम रहीम अरबाब थे, या हाँ मरहूम हद्दाद, मरहूम हद्दाद रहमतुल्ला अलैह, जो नजफ में थे और बहुत बड़े आरिफ थे, इनके बारे में यही बात हो रही थी कि इन्होंने ये बात कही, इन्होंने ये कहा था, मैंने आज तक जिंदगी भर मैंने किसी नामहरम को नहीं देखा है, ये उन्होंने दावा किया, इद्दआ किया। सही है, और मुमकिन है, पॉसिबल है, सही। अब देखें, अब ऐसा शख्स हो जिसने कभी भी नामहरम को ना देखा हो, ठीक है, अब इसकी, इसके ऊपर डिटेल्स डिस्कशन कर सकते हैं, क्या मतलब नामहरम को नहीं देखना, ठीक है, क्योंकि एक दफा पहली निगाह में इंसान जब नामहरम को देखता है तो गुनाह शुमार नहीं होता, लेकिन जब दूसरी दफा देखें तो ये खतरनाक है, यहां पर उसका गुनाह शुमार होना शुरू हो जाएगा। सही है, तो अब ऐसा इंसान जिसने कभी भी नामहरम को नहीं देखा है, अब आप खुद सोचे, अंदाजा लगाएं कि इसके वजूद में किस कदर वसअत पैदा हो गई होगी और किस कदर इसका आलम गैब से कनेक्शन और इर्तबात बरकरार हो चुका होगा। खुदा रहमत करे मिर्जा या मरहूम हद्दाद की, इंशाअल्लाह। बस अब जब इंसान का वजूद छोटा हो जाता है मासियत करने से, तो यहां पर खुदा की वो आयत सिद्क आती है, यहां पर खुदा की आयत एप्लीकेबल होती है। कौन सी? मशहूर है, सही है, सूरह बकरा के अवाइल में है कि खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम, खुदा उनके दिलों पर मोहर लगा देता है। जब खुदा ने मोहर लगा दी, अब वापस लौटना महाल है, महाल यानी पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, मगर ये कि खुदा की कोई खास रहमत हो, ठीक। या ये आयत भी आप देखें कि इन्नल्लज़ीना, सूरह बकरा की है, कि इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुन्ज़िरहुम ला युमिनून, ए नबी, चाहे तुम उनको इंज़ार करो ना करो, वो ईमान नहीं लाने वाले। आप देखिए क्यों, क्योंकि वजूद में फैलाव नहीं है, वजूद छोटा हो चुका है। या खतम अल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अबसारिहिम गिशावा व लहुम अज़ाबुन अज़ीम, और उनके ऊपर अजीम अज़ाब है। बस अब यहां पर शैतान की जात, शैतान की जात, सही है, उसका अमल नहीं, हम शैतान के अमल की बात नहीं कर रहे हैं यहां पर, अमल ये बता रहा है, उसने जो इनकार किया सजदे से और दुश्मनाना अंदाज में, और फिर खुदा से कहा कि मैं हरगिज सजदा नहीं करूंगा, ता कयामत में सजदा नहीं करूंगा, इसका मतलब इसने दुश्मनी का इजहार किया यहां पर, इस्तिकबार किया है। ये इससे हमें पता चल रहा कि उसकी जात दर हकीकत फासिद हो चुकी है, उसका आउटपुट इसका ये अमल है, इनकारे फरमान खुदावंदी। अब देखें, अगर हम ये कह रहे हैं कि शैतान इस कदर दुश्मन है, दूसरी तरफ से हम ये नहीं कह रहे कि शैतान खुदा को नहीं जानता, शैतान खुदा को नहीं पहचानता, शैतान खुदा को खूब पहचानता है। जिस कदर शैतान खुदा को पहचानता है, उसकी सिफात को, उसके इल्म को और उसकी तमाम खुसूसियात को, उतना हम नहीं पहचानते। दूसरी तरह से शैतान जितना इंसान को जानता है, हमें जानता है, उतना हम अपने आप को नहीं जानते। सही। और ये बहस और ये डिस्कशंस इसीलिए हो रही है ताकि हम अपने आप को पहचानना शुरू करें, ताकि पता चले शैतान हमारे खिलाफ क्या वो क्या कहेंगे उसको, क्या मूवमेंट चला रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम से के किस्से से लेकर अब तक, किस कदर वो इंसान का दुश्मन है। अब यहां पर जब मैंने आपके सामने ही कहा कि शैतान खुदा को खूब जानता है, अब आप देखें शैतान का डायलॉग, शैतान क्या कह रहा है। जब खुदावंद मुताल ने कहा शैतान को कि तू रजीम है, निकल जा यहां से, तो शैतान ने खुदा की रुबूबियत का इजहार कर कर अब ये बात कही। देखें सूरह हिजर नंबर 39, कौला शैतान का, शैतान की बात, रब्बे ए मेरे परवरदिगार, रब्बे यानी रुबूबियत, शैतान कह रहा है ए मेरे रब, यानी शैतान खुदा की रुबूबियत का अभी भी कायल है। रब्बी बिमा अगवैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्ज़ वलउग़वियन्नहुम अजमईन। अब यहां पर शैतान कह रहा है कि मैं इंसान को जो है वो अगवा करूंगा, उसको किडनैप करूंगा, और ये सारी बातें इंशाल्लाह इसके ऊपर हम आएंगे बाद में, लेकिन ये हम जान जान चुके हैं कि शैतान खुदा की रुबूबियत का अब भी कायल है, रजीम होने के बाद भी। अच्छा, अब यहां पर आप देखें हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलामुल्लाह अलैहा, शैतान को जब खुदा ने कह दिया तू रजीम है, तू निकल जा मेरी बारगाह से, अब इसके बाद अब हजरत आदम और हजरत हव्वा सलामुल्ला अलैहिम सलाम को खुदावंद मुताल ने हुक्म दिया कि तुम जाओ, तुम दोनों जाओ जन्नत में। खूब सूरह बकरा की अब उसी टाइमलाइन के साथ आए, आयत नंबर 35, वकुलना, हमने कहा या आदम उस्कुन अंत व जौजुका, उस्कुन अंत व जौजुकल जन्नता वकुला मिन्हा रगदन حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين। ए आदम, तुम और तुम्हारी जोजा दोनों जन्नत में साकिन हो जाओ, रिहाइश इख्तियार करो, स्टे करना शुरू कर दो, वकुला मिन्हा रगदन और जो तुम्हें खाना है, हैसु शिएतुमा जो तुम खाना खाना चाहते हो, जो नेमतें तुम इस्तेफादा करना चाहते हो जन्नत से वो इस्तेफादा करो, जो गजा है उससे इस्तेफादा करो, वाला तकरबा हाज़िहि शजरता, और ए आदम और ए हव्वा उस इस यानी हाज़िहि यानी ये, हाज़िहि यानी ये दरख्त, इसके करीब मत जाना तुम दोनों, वाला तकरबा यानी करीब मत जाना तुम दोनों इस शजरे के, ठीक है, फतकूना कि अगर तुम करीब चले गए तो क्या होगा, फतकूना मिन अज़्ज़ालिमीन, तो तुम दोनों ज़ालिमीन में से शुमार होगे। अब यहां पर एक और आयत में देखें, अब आप देखें खुदा ने मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा ना हजरत आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा मुख्तलिफ मकामात पर आया है कुरान के अंदर, ये आयत नंबर 35 ऑफ सूरह बकरा थी। अब सूरह ताहा की आयत नंबर 118 119 में खुदा उस जन्नत की जिसमें आदम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहिमा को भेजा गया है, उस जन्नत की खुसूसियात खुदावंद मुताल यहां बता रहे हैं कि इन्न लका अल्ला तजू अफीहा वला तारा व अन्नक ला तज़मऊ फीहा वला तज़हा। ए आदम, तेरे लिए जन्नत में ये इम्तियाज है, यानी तेरे लिए हमने ये चीजें वहां रखी हैं कि जन्नत में तुझे भूख नहीं लगेगी, तू वहां पर बरहना नहीं होगा, उरियान नहीं होगा, सही, और तुझे वहां पर प्यास नहीं लगेगी, तृष्णा नहीं होगा। और आखिर में क्या कहा, वला तवहा, सूरज और आफताब की तपिश तुम्हें नहीं लगेगी। अब आप देखिए ये जन्नत की खसूसियत है, ठीक है, क्या दोबारा देखें खुसूसियात, यानी जन्नत में भूख नहीं है, खाना है, गजा है लेकिन भूख के बगैर, पानी है, शरबतें हैं, जूसेस हैं जन्नत में लेकिन तृष्णगी के बगैर, इसी तरह उरियानी नहीं है वहां पर, और आफताब की तपिश नहीं है, सूरज की तपिश नहीं है वहां पर। ये अब ये कैसे मुमकिन है, मुमकिन है आप सवाल करें, और सवाल बिल्कुल दुरुस्त है कि कैसे मुमकिन है कि भूख के बगैर, सॉरी, खाने के बगैर, भूख के बगैर खाना, ठीक है, विदाउट हंगर, ये ऐसे ही जैसे जिनीन के मरहले में होता है, जब इंसान का नुतफा रहम मादर में आता है और बनता बनता जिनीन बनता है, आप देखें इस जिनीन को भूख नहीं लगती है, अगर भूख लगती है तो उसको एहसास नहीं होता भूख का, वो मुसलसल 9 महीने जो है वो खाने में मशगूल है, गजा ले रहा है अपनी मादर से, रहम मादर के अंदर, लेकिन जिनीन को भूख का एहसास नहीं है, असलन भूख का एहसास नहीं है, तो ये उसकी मानदंड है, ठीक है। अब एक और वजह है, अच्छा ये तो मैंने आपको मिसाल दी ना कि ये कैसे मुमकिन है, ये यानी इसकी मिसाल आपको दी, अब ये कैसे मुमकिन है कि जन्नत में ऐसी क्या खसूसियत है। देखें हम जन्नत में जाने के ख्वाह हैं, हमारा मकसद भी जन्नत है, क्यों हमारा मकसद जन्नत है, आया हमारा मकसद जन्नत है जन्नत की वजह से, नहीं, क्योंकि एक हदीस में है कि यह आयत अभी मुझे जहन में नहीं है कि ए इंसान अपने आप को जन्नत की कीमत में मत बेचो, सही है, तुम्हारा मकाम जन्नत से बालातर है, होना यह चाहिए बजाय इसके कि इंसान जन्नत का मुश्ताक हो, जन्नत इंसान की मुश्ताक है, सही, हम क्यों जन्नत के मुश्ताक होने चाहिए, चलें मैं अगर मुश्ताक होने की बात कर लूं कि वी मस्ट गो टू हेवन, और जाना भी चाहिए, क्यों जन्नत में हमें जाना चाहिए, क्योंकि जन्नत में खुदा है, जन्नत में खुदा की निगाहें हमारे ऊपर है, डायरेक्ट निगाह, ये जन्नत की सबसे आली खसूसियात है। जन्नत में हम इंसान कामिल के हमरा हैं, अंबिया इलाही के साथ हैं, मासूमीन अलैहिस्सलाम के साथ हैं, सही है। आयतुल्ला जवाद आमली हाफिज़हुल्लाह को जब पूछा गया कि जब आप जन्नत जाएंगे, बिलाखिर ये उलमा जन्नती हैं, बिलाखिर आयतुल्ला बेहजत और दीगर जो उलमा हैं, उरफा हैं, जो फौत हो चुके हैं, वो जन्नती उलमा है बिलाखिर, और जो अभी भी जिंदा हैं, जिनको अभी तक हम शायद नहीं जानते, सही, वो भी जन्नती हैं, बहेश्ती हैं। जब आयतुल्ला जवादी आमली से पूछा गया कि आपकी आरजू क्या होगी जन्नत के अंदर, तो आयतुल्ला जवादी आमली ने कहा कि मेरी आरजू ये है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के महजर में दर्स हासिल करूं, अमीरुल मोमिनीन के महजर में क्या करूं, दर्स हासिल करूं, उलूम दीनी की दर्स, ठीक है, यानी जो काम मैं दुनिया में मैं मशगूल था, यानी हौजे के अंदर, मदरसे के अंदर और उलूम दीनिया में मैं मशगूल था, यही आरजू मेरी जन्नत में भी है कि मैं अमीरुल मोमिनीन के महजर में उलूम दीनी को हासिल करूं। देखें ये आरजू का लेवल, देखें अब हम अपनी आरजुओं को इन उलमा की आरजुओं से मुकायसा करें। अच्छा अब हमें ये देखना है कि वो क्या वजह है कि जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम जब गए तो जन्नत की खसूसियत ये है कि भूख के बगैर खाना है, सही, और जूसेस हैं, शरबत हैं, लेकिन प्यास नहीं है, इसकी वजह देखें, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको गौर से सुने, इसकी वजह ये कि जब आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा जन्नत में आए थे खिलकत के बाद, ये खिलकत ताजा ताजा खल्क हुए, सही है, व नफख तो फी ही मिन रूही, हमने अपनी रूह को फूंका, ये सारे मराहिल तय होने के बाद और ये सारे वाकयात के बाद जन्नत क्या है? जन्नत में आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा खुदा के जज्बे में गर्क थे, खुदा के उस, अब जज्बे को हम क्या कहेंगे, आई डोंट नो, इंग्लिश में, इंग्लिश में अट्रैक्शन कहेंगे, ठीक है। ये इस कदर खुदा के उस महज़ रूबूबी में गर्क हो चुके थे, इस कदर जज्बा इलाही में मुस्तगरक हो चुके थे, मुस्तगरक यानी गर्क हो चुके थे, मेल्ट हो चुके थे, कि भूख का एहसास ही नहीं था, प्यास का एहसास ही नहीं था। क्या मतलब भूख का एहसास नहीं था? मैंने आपको कहा ना, भूख का क्या मतलब है? भूख यानी बदन, भूख और प्यास यानी बदन के अहकाम। आदम और हव्वा सलामुल्लाह अलैह इस कदर खुदा के जज्बे में गर्क हो चुके थे कि अपने बदन की तरफ असलन तवज्जो ही नहीं थी, असलन बदन के अहकाम, बदन के अहकाम तो दूर की बात है, जब इंसान को बदन की तरफ तवज्जो ही नहीं है तो बदन के अहकाम की निस्बत क्या तवज्जो होगी। तो आदम अलैहिस्सलाम इस कदर मजजूब हो चुके थे, अट्रैक्ट हो चुके थे और मेल्ट डाउन हो चुके थे खुदा की उस जज्बे के अंदर, उस मानवी जज्बे जज्बे के अंदर, के असलन भूख का एहसास नहीं, प्यास का एहसास नहीं, सूरज की तपिश का एहसास नहीं, यानी तवज्जो बे बदन तमाम शोध सही, बदन की तरफ तवज्जो नहीं है, बदन है। देखें जन्नत, मैंने आपको कहा ना, तमाम खिलकत के मराहिल तय हो चुके हैं, तालीम असमा हो चुकी है, सजदे का मराहिल तय पा चुके हैं। अब आदम, आदम अलैहिस्सलाम अपनी बॉडी समेत जन्नत में भेजे जा रहे हैं। इसी वजह से आइमा अलैहिस्सलाम को जब पूछा गया कि ये जन्नत आया वही उखरवी जन्नत जन्नत थी या नहीं थी, तो आइमा फरमाते कि नहीं, वो उखरवी जन्नत नहीं थी जिसमें आदम को दाखिल किया गया, बल्कि ये दुनियावी जन्नत में से एक जन्नत थी, या अगर ये ताबीर बेहतर है कि दुनियावी जन्नत थी, इसी दुनिया की एक जन्नत थी। अब तारीखी एतबार से ये कहा जाता कि ये सारे जो वाकयात पेश आए ये इसी मिडिल ईस्ट के अंदर ये सब हुआ है, सही है, कि जो वो जो बाग था वो जन्नत थी जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, ये बाग इसी इराक और इस नजफ के इलाके में ही था ये, ठीक है। और जितने भी अक्सर जो अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं वो अक्सर मिडिल ईस्ट के अंदर आए, वो भी इराक के अंदर, इसी नजफ और कूफा के लोकेशंस के अंदर इनको मबूस किया गया है। अब आयमा ये फरमाते हैं अलैहिस्सलाम कि वो जो उखरवी जन्नत है वो जन्नत खुल्द है, वहां पर खुलूद है। क्या मतलब वहां पर खुलूद है? सही है, हुम फीहा खालिदून, कितनी दफा हमने कुरान में पढ़ा है, हुम फीहा खालिदून, खालिदून खुलूद खुल्द, इसका मतलब हमेशगी, यानी एक दफा इंसान उस खुलूद की जन्नत में यानी आखिरत में दाखिल हो गया फिर वापस कभी नहीं निकलेगा वहां से, हमेशा वो जन्नत में होगा। दुखूल है जन्नत के अंदर, जन्नत खुल के अंदर, जन्नत उखरवी के अंदर, लेकिन खुरूज नहीं है। लेकिन ये दुनियावी जन्नत थी, ठीक है, जिसमें आदम अलैहिस्सलाम को दाखिल किया गया, वहां भेजा गया, सही। लेकिन इस तमाम अभी तक जो मैंने आपकी बात की ना इस जन्नत के माजरा के हवाले से, सबसे असली पॉइंट क्या था यहां पर आप बताएं मुझे, सबसे यानी जो हमारे इंसानी स्ट्रक्चर से मजबूत है वो क्या पॉइंट था? वो ये पॉइंट था, कौन सा? जज्बा इलाही वाला, कि आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा सलामुल्लाह अलैहा इस कदर जज्बा इलाही में गर्क हो चुके थे कि बदन की तरफ तवज्जो नहीं थी। एक नतीजा लूं मैं आपके लिए, इसका मतलब हमें दुनिया में भी ये काम करना है, दुनिया में भी हमें बदन के अहकाम की तरफ तवज्जो कम करनी होगी। अगरचे खाना खाना चाहिए, प्यास बुझानी चाहिए, यह सब कुछ अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि दीन के वाजिबात में से एक वाजिब है कि इंसान अपने बदन को महफूज रखे, इंसान ऐसा कोई काम ना करे जिससे उसका बदन जयीफ हो। बस खाना खाना चाहिए, प्यास बुझानी चाहिए, बदन के जो दीगर उमूर हैं उनको अंजाम देने चाहिए, लेकिन इस तरह के इंसान जज्बा इलाही से महरूम ना हो जाए, इस तरह के इंसान अपनी हकीकत से गाफिल ना हो जाए। इस वक्त हम इस कदर बदन के अंदर, राइट नाउ, इस वक्त 21st सेंचुरी में इस कदर मटीरियलिज्म और ये टेक्नोलॉजी, अच्छी बात है टेक्नोलॉजी का इनकार नहीं हो रहा, लेकिन एक नुकसान ये हुआ है टेक्नोलॉजी का कि वो ये कि हम अपने बदन में इस कदर गर्क हो चुके हैं, अपने बदन के अहकाम के अंदर इस कदर गर्क हो चुके हैं कि अपनी स्पिरिचुअलिटी, अपना हकीकी मन उसकी नस्बत गाफिल हो चुके हैं। अब यहां पर देखें, शजरे ममनुआ, सही है, आदम अलैहिस्सलाम और हवा सलामुल्लाह अलैहा को कहा गया कि उस शजरा की तरफ मत जाओ, दरख की तरफ। अब यहां पर क्वेश्चन, यहां पर पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट ये है कि वला तकरबा, करीब मत जाओ। इसको अरेबिक में कहते हैं ये, जब एक बुजुर्ग, एक बड़ी शख्सियत एक छोटी शख्सियत को हुक्म दे के ये काम ना करो, इसको अरेबिक ग्रामर के कहते हैं नहीं। अगर मैं अपने बेटे को हुक्म दूं कि बेटा मेरे लिए पानी लेकर आओ, या चले बेटा पानी लेकर आओ तो थोड़ा उसमें मुमकिन है वो ना भी लाए, लेकिन अगर मैं सही से हुक्म दूं कि भाई पानी लेके आओ, सही, तो उसके लिए वाजिब है मानना, सही है। अगर उसने माना नहीं, उसने मेरी बात नहीं मानी, तो एक लिहाज से मासियत है, सही है, क्योंकि बाप बाप वली होता है। मासूम के बाद कौन वली है इंसान का? बाप इंसान का वली है, लेकिन यानी बच्चों के लिए। अब अगर बाप हुक्म दे कि ये काम ना करो, करो, उसको हम कहते हैं आमर, फेले आमर, ये काम करो। और जब नहीं, ये काम नहीं करो, तो अरेबिक में इसको कहते हैं फेले नहीं, ठीक है। अब खुदा ने यहां पर नहीं की आदम को कि ला तकरबा, मत जाना उसके करीब। अब सवाल यहां पर यह है, और इस सवाल और इस टॉपिक में इस कदर नजरियात मौजूद हैं, और बस उलमा जो है वो यहां पर गलत यानी तफसीर का शिकार हो जाते हैं। सही है, बिलाखिर मासूम तो नहीं है, लेकिन अफसोस ये होता है कि बस शिया उलमा भी यहां पर अफसोस की बात है। देखें, नहीं से मुराद किया है। अब अगर खुदा ने आदम अलैहिस्सलाम को मना किया है कि तुम मत जाओ उस शजरे के करीब, आदम अलैहिस्सलाम तो बाद में चले जाते हैं ना, यानी वसवसे के बाद। अब हम आएंगे उसके ऊपर अगर टाइम बचा तो। शैतान ने वसवसा किया, आदम चले गए और उस दरख से तनावुल किया, खाया उस दरख से। तो क्या आदम अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया? नहीं, गुनाह नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम ने। क्यों? इसकी वजह यह है कि गुनाह सवाब, सही है, सवाब गुनाह, ये सारे जो अहकाम है जो हम फिक में पढ़ते हैं और दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद और बुलूग के बाद, सही, बालिग होने के बाद ये तमाम अहकाम हमारे ऊपर लागू होते हैं। अगर हमने अंजाम दिया सवाब मिलेगा, अंजाम नहीं दिया गुनाह मिलेगा, मासियत, ये सब बुलूग के बाद है। लेकिन बुलूग के बाद से क्या मुराद है? जमीन पर आने के बाद ये अहकाम लागू होते हैं, जबकि आदम अलैहिस्सलाम अभी तक यहां पर जमीन में नहीं आए। जमीन पर हुबूत के बाद आएंगे। हुबूत कब होगा? जब शजरे से वो खाएंगे, खाने के बाद खुदा हुक्म देगा हुबूत, कुल्ला बितू, कि तुम निकल जाओ यहां से। अब निकल जाओ उस तरह से नहीं जिस तरह मैं कह रहा हूं, ठीक है, वो अंदाज नहीं है, ठीक है। अब मुमकिन आप कहें कि आपने तो अभी कहा था कि जन्नत दुनियावी जन्नत थी, सही है, तो इसका क्या मतलब है? यहां पर दो चीजें, दुनिया और जमीन में फर्क है, सही है, दुनिया और जमीन में फर्क है। अब ये फर्क क्या है, ये खुद एक हायर क्लास की टॉपिक है, ठीक है, ये असातीर की तरफ, इसकी तरफ रुजू करने की जरूरत है इस बहस के हवाले से कि दुनिया और जमीन में क्या फर्क है, ठीक है। अब इसी वजह से इमाम अलैहिस्सलाम ने जब उस शख्स के सवाल के जवाब में, जब शख्स ने सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलाम किस जन्नत में थे, तो इमाम ने नहीं कहा कि जमीन की जन्नत, इमाम ने कहा दुनियावी जन्नत, बस जमीन की, जमीन और है, दुनिया और है। और अपनी तरफ से मैं नहीं कह रहा, बल्कि उलमा और मुफस्सिरीन ने ये बात कही है, ठीक है। अब ये क्या तारीख एतबार से वो जन्नत क्या मिडिल ईस्ट, और ये नकल है, नकल कौल है, लेकिन बहुत सारे लोग इसके बारे में राय रखते हैं कि ये जन्नत जो है ये वाकया वहां पेश आया। अब इसके बारे में इसकी क्या तफसीलात हैं, फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते, ठीक है, लेकिन दिशनगी आपके अंदर होनी चाहिए, इसके लिए मुतालियात जरूरी हैं और तहकीकात, मुफस्सल तहकीकात की जरूरत है तारीखी एतबार से। अगर मुझे कोई रेफरेंस मिला और मुझे कोई PDF मिल गई उर्दू में, या अगर मैं इसको ट्रांसलेट कर पाया, तो मैं आपके लिए हतमन इसको मैं پوسٹ کر دوں گا میں اس کو اسی موضوع کے اوپر تاریخی اعتبار سے. لیکن یہ یاد ہے کہ دنیا اور زمین میں فرق ہے. اچھا تکلیف, دیکھیں فارسی میں کہتے ہیں ہم تکلیف, تکلیف یعنی یہی واجب حرام مستحب مکروہ مباح, اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں احکام تکلیفی. فارسی میں بھی یہی کہتے ہیں جو کہ عربک سے لیا گیا, احکام تکلیفی واجب حرام مستحب یہ سب. مفسرین یہ فرماتے ہیں, علامہ طباطبائی رحمتہ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جب نہیں کی گئی کہ یہ کام مت کرو سید, تو یہ تکلیف نہیں تھی آدم کے لیے کہ جب انسان زمین پہ آتا ہے اور بالغ ہوتا ہے اور اس کے لیے کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں. نہیں, یہ اس اعتبار سے نہیں کا حکم نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب آدم علیہ السلام نے وہ شجرہ اس سے تناول کیا تو یہ اسیان اور گناہ نہیں کہلاتا, اور یہ ہمارے شیعہ عقائد میں سے ہے, مسلمات میں سے کنفرم, مسلمان یعنی 100% کہ انبیاء علیہ السلام سب کے سب معصوم ہیں, پیدائش سے معصوم ہیں تمام انبیاء. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک کی پوائنٹ بتا دوں, اگر آپ کو کوئی اینالائز کرنا ہو. اب دیکھیں اور بھی انبیاء ہیں, مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو مکہ مارا, ٹھیک ہے, اور وہ وہیں پر فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. یا حضرت یونس علیہ السلام نے خدا کی بات نہیں مانی اور ان کو خدا نے اس پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں جو ہے وہ مبتلا کیا کئی سالوں تک. یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں, لیکن اس کو تحلیل کس طرح کریں, ہم اس کو اینالائز کس طرح کریں؟ آیا ہم کہہ دیں انہوں نے گناہ کیا؟ نہیں, انہوں نے گناہ نہیں کیا. کیوں؟ کیونکہ انبیاء علیہ السلام پیدائش سے معصوم ہیں. کوئی بھی دیکھیں, آپ کوئی بھی تحلیل اور انالیسس اس قسم کی باتوں کا کرنا چاہیں تو آپ کو اس معصومیت, انبیاء کی اس معصومیت کے دائرے میں کرنا ہوگا, اس سے خارج ہو کے آپ تحلیل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اب اگر کوئی عالم یہ کہتا ہے کہ قرآن میں تو آیا ہے کہ عصا, صحیح ہے, عصا آدم ربہ, آدم نے خدا کی معصیت کی. اب یہ قرآن میں آیا ہے. اب معصیت یعنی گناہ, صحیح ہے, لفظی ترجمہ بھی یہ ہے, آدم نے معصیت کی خدا کی, ٹھیک ہے, گناہ انجام دیا, صحیح ہے. اب ایک عالم کے بقول کہ بھائی یہاں تو لکھا ہوا ہے عصا کے مت کا مطلب گناہ. اب انہوں نے تو یہ بھی کہا بعد میں کہ تمام شیعہ مفسرین اس خدا کے اس بات کے سامنے کھڑے ہو گئے اور توجیہ کرنے لگے کہ نہیں, آدم نے گناہ نہیں کیا, آدم نے گناہ نہیں کیا. صحیح. اب دیکھیں بعض شیعہ علماء بھی یہ کہتے ہیں کہ آدم نے گناہ کیا, جبکہ غلط ہے. یہ ہم انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں. صحیح. انبیاء کے بارے میں جو تحلیل کرنی ہو, جو انالیسس کرنا ہو, اس عصمت کے سرکل کے اندر رہتے ہوئے آپ تحلیل کر سکتے ہیں. صحیح. اوکے. اب یہاں پر ایک اور سوال یہ بھی ہے کہ یہ درخت کیا تھا, یہ شجر ممنوعہ کیا تھا؟ اس کے بارے میں مختلف اقوال روایات کے اندر بھی ہے. بعض روایات یہ کہتی ہیں کہ یہ انگور کا تھا, یہ گندم کا تھا, لیکن فی الحال اس سے کوئی ہماری خاص غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن ایک بات کنفرم ہے, وہ کیا ہے کہ یہ درخت توجہ بے بدن کا درخت تھا. دوبارہ, یہ درخت دنیا سے متعلق تھا, یعنی اگر آدم علیہ السلام اس درخت سے تناول کر لیں کہ انہوں نے کیا, اس کے نتیجے میں توجہ بے بدن محقق ہو جائے گی. میں نے کہا نا, حضرت آدم حضرت حوا سلام اللہ علیہما جب جنت میں آئے تو وہ اس قدر غرق تھے خدا کے بارگاہ کے اندر اور خدا کے اس محضر میں, خدا کی اس ذات میں غرق تھے کہ توجہ میں بدن نہیں تھی, جبکہ بدن موجود تھا, بدن موجود تھا لیکن توجہ نہیں تھی. یہاں پر جب خداوند نے متعال نے منع کیا کہ نہیں کھاؤ اس درخت سے, تو یہ درخت در حقیقت وہی درخت ہے کہ اگر اس سے کھا لیا تو بدن کی طرف توجہ آ جائے گی اور آدم علیہ السلام اس جذبہ الہی سے باہر نکل آئیں گے. صحیح. لیکن بدن کی طرف توجہ آنا ضروری تھا, درخت سے کھانا ضروری تھا آدم کے لیے. یہ نقشہ الہی میں سے تھا, یہ خدا کی پلاننگ میں سے تھی کہ آدم علیہ السلام کو حتمن و حتمن درخت سے کھانا ہے. کیوں, ایسی کیا بات ہے؟ کیوں؟ کیونکہ آدم علیہ السلام, خدا یہ چاہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام اور انسان, ہم انسان دیکھیں نا, ہم صرف آدم علیہ السلام کو بے عنوان شخص سے آدم نہ دیکھیں بلکہ بے عنوان انسان کامل دیکھیں. آدم یعنی انسان کامل, آدم یعنی ہم سب, ہم سب جو آدم تو انسان کامل کے مرتبے تک پہنچ چکے ہیں لیکن ہم پہنچ سکتے ہیں. تو یہ سارے جو قصے بیان ہو رہے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے, مختلف ایونٹس ہم نے دیکھے, یہ سب در حقیقت ہمارے قصے ہیں. اوکے, اس کے اوپر ممکن ہم آئیں بعد میں. اوکے, اب ٹائم ختم ہو رہا ہے, میں اس بات کو بیان کر دوں اور پھر نیکسٹ سیشن میں اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. وہ یہ کہ بدن کی طرف توجہ دلانا ضروری تھا آدم کو. کیوں؟ کیونکہ خداوند متعال نے انسان کو دو حصوں میں خلق کیا, دو پارٹس ہیں انسان کے, بدن اور روح. صحیح ہے. اب آدم علیہ السلام کو یہ توجہ دلانا کہ بھائی تمہارا بدن بھی ہے, تو اس کی خاطر خدا نے وہاں درخت رکھا ہوا تھا بہشت میں, اور اگرچہ منع کیا آدم علیہ السلام کو لیکن خدا کا اصل مقصد یہی تھا کہ آدم علیہ السلام جائیں اس بہشت, اس درخت سے کھائیں, تناول کریں اور توجہ بے بدن آ جائے اور زمین پہ آ جائے نتیجے میں, اور یہ دنیاوی زندگی شروع ہو, شریعت الہی کا آغاز ہو اور اسلام آئے, انبیاء آئے اور یہ سب حقائق اور یہ ایونٹس یہ سب رونما ہونے ہیں. صحیح. اب یہاں پر بہت تفصیلات ہیں, یعنی یہ ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر ہم آرام سے ایک دو سیشنز مزید کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے کہا نا دس از جسٹ اے شارٹ کورس آف انسان شناسی. ہم اس کے اوپر مزید نیکسٹ ایئر شاید بات کریں گے, انشاءاللہ آپ دعا کریں, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ توجہ دلانا ضروری تھا. اب اسی توجہ بدن کی طرف توجہ ہم کل بات کریں گے, اس کے اوپر ایک دو اور باتیں یہاں پر ضروری ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنے سوالات فی الحال ہولڈ پہ رکھیں, ممکن ہے کل اس کے جوابات آ جائیں. انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کی شناخت حاصل کر سکیں, اور اپنی شناخت کے بعد اس کمال کے سفر پر گامزن ہو جائیں, آ جائیں اور اس سفر کو طے کریں اور اپنے کمال کو حاصل کریں, پلس امام سے بھی ہم متصل ہو جائیں. کیونکہ کمال کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم امام سے متصل ہو جائیں گے اور ان دی اینڈ خدا سے متصل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد.